नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 9। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसः भक्त्या तुतोष भगवान् गजजुत्थपाय। ब्रह्मा जी ने कहा प्रह्लाद महाराज से, तुम जाओ भगवान को प्रसन्न करो, क्योंकि तुम्हारे पिता पर भगवान क्रुद्ध है। तो श्री प्रहलाद महाराज भगवान से कुछ निवेदन कर रहे हैं। पहले उन्होंने अपनी दीनता व्यक्त किया, अपनी अयोग्यता व्यक्त किया कि इतने बड़े बड़े देवता मुनि जन धारावाहिक स्तुतियों से आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, तो मैं असुर जाति का जन्मा हुआ सब तरह से हीन नीच कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूं। उसके बाद एक सिद्धांत बोल रहे हैं, मन्ने धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजजुत्थ पाय। संसार में कोई भी भौतिक योग्यता आपको प्रसन्न नहीं कर पाती। जैसे किसी के पास धन हो तो बहुत सा धन भगवान को अर्पण कर दे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। धन पहले कह रहे हैं, मन ने, मैं मानता हूं मेरे समझ के अनुसार धन और अभिजन ऊंचे कुल में जाने रूप और शारीरिक सौंदर्य तपः श्रुतौज मन्ने धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज किसी व्यक्ति में बहुत सुंदरता है, बहुत कांति है, तेज है और ओज है, इंद्रियों में बहुत स्फूर्ति है, श्रुता उसने वेद शास्त्र का अच्छी तरह से श्रवण किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, तपस्या किया है, पर इन गुणों से भगवान प्रसन्न नहीं होते। तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, तेज उसका प्रताप प्रभाव और प्रभुता, प्रभु के भाव को ही प्रभाव कहते हैं, जिसका बहुत लोगों पर और बहुत क्षेत्र में प्रताप है, प्रभाव है, पौरुष और उद्यम शक्ति है, पुरुषार्थ करता है। तो ये पुरुषार्थ और बुद्धि योग, बुद्धि और योग कर्म योग में कुशल है या अष्टांग योग में या ज्ञान योग में, बहुत से उपाय जानता है। तो इन सब उपायों से, योगों से भगवान प्रसन्न नहीं होते। मन्ने धनाभिजन रूप तप श्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि जोगा। मैं ऐसा मानता हूं हे प्रभु कि धन से, ऊंचे वंश में जन्म से, सौंदर्य से, तपस्या से, ज्ञान से, इंद्रियों की स्फूर्ति से, शारीरिक बल से, बुद्धि से, प्रभाव से आपको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। आपके जीवन में देखा गया है कि सब तरह से हीन, सभी गुणों से हीन गजेंद्र आपको पुकारे और आप प्रसन्न होकर के गरुड़ पर चढ़ करके उनकी रक्षा के लिए प्रकट हो गए। देखा गया है कि भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। गजेंद्र कौन बड़े विद्वान थे, कौन उन्होंने डिलीट किया था या बहुत शास्त्र पढ़ा था, कौन वे इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, बहुत बड़े बड़े पद पर थे, कुछ भी नहीं था। केवल भक्त्या, भक्त्या केवलया तुतोष, तुष्ट हो गए भगवान जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। उन भगवान को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। उनको क्या धन चाहिए, असंपूर्ण वैभव, प्राकृत लोक का धन और वैकुंठ का धन सब भगवान के अधीन है। वे भगवान है, समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, तो उनको धन की जरूरत नहीं है। अतः कोई धन से प्रसन्न नहीं कर सकता। इन सब गुणों से हीन थे गजेंद्र, धन से और ऊंचे कुल का तो प्रश्न ही नहीं है। वे हाथी थे, हाथी कोई उच्च कुल नहीं है, तो मनुष्य भी नहीं है, पशु है। एक पशु के प्रति श्री भगवान प्रसन्न हो गए। वह क्यों? भक्त्या, भक्ति से। तो गजेंद्र में धन, गजेंद्र के पास धन नहीं था, ऊंचे कुल में जन्म नहीं था, वे कोई राजर्षि नहीं थे, ब्रह्मर्षि नहीं थे, उनमें सुंदरता नहीं थी और तपस्या भी नहीं थी। यह कथा है भागवत में कि गजेंद्र जब त्रिकूट पर्वत पर जन्म लिए क्षीर सागर के बीच, क्षीर सागर में एक बहुत बड़ा ऊंचा पर्वत है, उसे त्रिकूट कहते हैं, तो बहुत सुंदर वन था उस पर्वत में, बहुत समृद्धि थी और वहीं पर गजेंद्र को जन्म मिला हाथी के रूप में। तो वे अनेक हाथिनियों के साथ उस वन में विहार कर रहे थे। एक समय गर्मी का दिन था, समर डे, बहुत अधिक धूप थी, और यह बात प्रसिद्ध है कि हाथी गर्मी से घबराता है, दवानम से या सूर्य के ऊंचे ताप से हाथी दूर रहते हैं। तो वो पड़ गया था कठिन धूप में, और इसके साथ ही सूर्य की किरणें पूंजीभूत होकर के लग रही थी। कभी कभी ऐसा होता है, कहीं पहाड़ की चट्टान यदि स्फटिक मणि है या रिफ्लेक्शन करने वाला पत्थर है तो वहां से सूर्य की किरणें टकरा जाती, वहां से इकट्ठी हो जाती है। जैसे दर्पण हो, दर्पण यदि गोला है तो प्रकाश पूंजीभूत होकर के पड़ेगा। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी दर्पण से आग लग जाती है, क्योंकि सारी किरणें एक जगह आने लगती है। तो ये पर्वत में वन में विहार कर रहे थे, गर्मी का महीना था, तो अकस्मात प्रचंड धूप लगने लगी। वो पर्वत की चट्टानों से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के वो धूप लग रही थी, सूर्य की किरण। तो वहां से भागे अकस्मात, और सभी हाथी घबराए थे, उनको प्यास लगी थी और हथिनियों को भी प्यास लगी थी। तो वे कोई तपस्या नहीं कर रहे थे, वो विषय भोग में पड़े हुए थे, विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। कभी अपने जीवन में दुख नहीं देखा था गजेंद्र ने, उस भूमि के प्रभाव से, और इनमें शारीरिक बल था, इस कारण से सभी जानवर, सिंह, बड़े बड़े हाथी, गैंडे, ये सभी इनके बस में रहते थे, इनसे डरते थे। यह पता लग जाता था कि गजेंद्र इस एरिया में हैं, तो एरिया छोड़ करके वो भाग जाते थे। बड़े बड़े बाघ, सिंह, इनसे डरते थे, सब जगह इनका प्रभाव था। तो इनको अकस्मात प्यास लग गई, और प्यास के साथ ही प्रचंड गर्मी लगने लगी। प्रायः उस क्षीर सागर में, उस पर्वत पर ऐसा नहीं होता था, लेकिन उस दिन होने लगा। बहुत गर्मी बढ़ गई और बहुत प्यास लग गई, इसलिए वे दौड़ने लगे, पर दौड़ते दौड़ते थक गए। और बच्चे भी दौड़ रहे थे, छोटे छोटे हथिनियां भी, वे सब पीछे पीछे दौड़ रहे थे। सबको बहुत थकावट हो गई, गजेंद्र भी थक गए। तब तक अकस्मात इनको जल के अस्तित्व की सूचना मिली। ऐसी हवा आने लगी, उस हवा में कमल की सुगंध आ रही थी, तो ये समझ गए कि कहीं पास में सरोवर है, उस पर्वत पर सरोवर था, कुंड था, तो वहां से कमल खिला था, तो कमल के सुगंध को लेकर हवा आ रही थी। उन्होंने कहा अपनी भाषा में कि ये जल यहां है, इसीलिए कमल खिला है और कमल की सुगंध आ रही है। तो सभी हाथी, हथिनियां और बच्चे सूंड उठा करके उस हवा को सूंघने लगे। हवा आ रही थी, तब सबने कहा कि हाँ, यहाँ यहाँ पानी है, और प्यास सबको लगी थी, तो गजेंद्र वहां चले, सब लोग पीछे पीछे चले, पहुंचे सरोवर के पास, झील के पास। वो बहुत बड़ा सरोवर था, क्षीर सागर में बहुत बड़ा पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर यह झील था, लेक था। तो वहां दौड़ करके गए और वहां जा करके गजेंद्र पानी पिए, इसीलिए हाथी को द्वीप कहते हैं, जो दो बार पिए, एक बार सूंड से पानी खींच करके और फिर ऐसे अपने मुख में डालता है तो दो बार पीता है। तो पहले जल पिए और जल पी करके इसके बाद बच्चों को पिलाए। वे सब डर रहे थे उस सरोवर में जाने में, हथिनियां भी डर रही थी, इसलिए कम पानी में वो लोग खड़े थे। और गजेंद्र तो पहुंचते ही जल विहार करने लगे, अपनी थकावट मिटा लिए, अपनी जलन मिटा लिए, उस बहुत गहरे कुंड में नहा नहा करके खूब नहाए। इसके बाद अपनी पत्नियों को, हथिनियों को जल पिलाने लगे। वे भी भीतर जाने में डर रही थी, ये डर रहता है कि कहीं बड़ा मगर होगा, नक्र होगा, घड़ियाल, वो पकड़ लेगा। तो पानी में मगर का बल बहुत अधिक होता है, अगर पानी में रहे मगर तो बड़े बड़े हाथी को भी खींच लेता है, और जमीन पर आ जाए तो कुत्ते भी उसको नोचते हैं, उसका बल काम नहीं करता है। तो हथिनियां और छोटे छोटे बच्चे बहुत डर रहे थे, इसलिए वे केवल जांघ भर पानी में खड़े थे, वे नहा नहीं रहे थे। तो गजेंद्र स्नेह बस अपने परिवार की ममता से लगे सबको जल पिलाने, अपनी सूंड से पानी खींच खींच करके फ्रेश वाटर, बिल्कुल शीतल जल पिलाने लगे। और पिलाने के बाद इसके बाद स्प्रिंकल करने लगे, नहवाने लगे सबको, सबके ऊपर अपनी सूंड से पानी का फुहारा डाल डाल करके नहवाने लगे। इस प्रकार से सबको नहवा करके बच्चों को और पत्नियों को उसके बाद जल में विहार करने लगे। फिर तो वहीं उसी कुंड में एक गंधर्व दुर्गति प्राप्त किए थे, हुहू नामक गंधर्व, जिनको देवल मुनि ने साप दिया था। देवल मुनि का नाम भगवत गीता में है, असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रविष्यमि। वेदव्यास देव, असित, देवल, इन ऋषियों का नाम है, अर्जुन कहते हैं, बहुत महान ऋषि। लेकिन उन्होंने साप दे दिया था गंधर्व को। क्यों साप दिया था? वो गंधर्व आया था एक बार, यहां नहीं कहीं और, अप्सराओं के साथ। तो इन ऋषियों की वो टांग पकड़ करके खींचता था, पानी में डुबाता था, आपस में बात करता था, देखो मैं कितना अच्छा मगर बन रहा हूं। पानी में डूब करके आता था और चुपके से ऋषियों को कपैर खींच करके उनको डुबाने लगता था। तो इसी तरह से उसने देवल मुनि के साथ किया, तो वे साप दिए उसको कि तुम मगर बन रहे हो, तुम सचमुच के मगर हो जाओ। इसके बाद वो गंधर्व रोने लगा, पता लगा आप दयालु महात्मा हैं, हमारी गलती क्षमा कीजिए। मैं कहां गंधर्व और कहां पानी में रहना मगर बन करके, बड़ी दुर्गति थी ना, इसलिए ऋषि को दया आ गई। उन्होंने साप दिया, साप का निवारण ऐसे किया कि अब मेरे मुख से निकल गया तो अब तो तुम्हें होना है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं मगर बन जाऊंगा, लेकिन इससे कैसे मुक्त होऊंगा, इस योनि से आप कृपा करके वो भी उपाय बता दीजिए। तब कृपालु ऋषि ने कह दिया, तुम्हारा जन्म त्रिकूट पर्वत पर होगा, तुम सरोवर के अंदर रहोगे और उसी में कभी भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हाथी के रूप में आएंगे और तुम पैर को बहुत कड़ाई से टाइटली पकड़ लेना है और कितना भी वे जोर लगावे छोड़ना नहीं। तो उनको छुड़ाने के लिए स्वयं भगवान आएंगे, तो उस समय तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। यह बात हुहु गंधर्व को याद थी। तो गजेंद्र जब इस तरह जल में विहार कर रहे थे तो वो जल सरोवर तो उसका घर था, हुहु का, मगर का, वो चिढ़ गया गजेंद्र से और वो बात याद थी ही, अपना उद्धार करना था, तो गजेंद्र का पैर पकड़ लिया बहुत कड़ा। तो गजेंद्र इसके बाद चिघाड़ने लगे, बचाओ बचाओ मुझको, बड़े बड़े हाथी लगे उनको बचाने के लिए। वे अपनी सूंड से उनका पैर पकड़ लिए खींचने के लिए, चेन बनाए सभी हाथी, बहुत जोर लगा रहे थे लेकिन वो ग्राह छोड़ा नहीं उनको। बहुत देर तक युद्ध हुआ, बड़े बड़े हाथी वे सब हार गए। तब वे छोड़ करके अब क्या करे बेचारा, संकट में था। जब वे स्वयं अब निकल गए और सब चरने चले गए जंगल में, तब हथिनिया प्रयास करने लगे। बेचारी उन लोगों की बहुत ममता थी, तो बड़े बड़े हाथी हार गए लेकिन उनकी पत्नियां हथिनिया लगी निकालने में। तो जब गजेंद्र लोग हार गए, बड़े बड़े हाथी, तो ये क्या निकाल सकती थी, पर फिर भी लगी रही। उसके बाद ये भी थक गई। उन्होंने सोचा कि अपना अपना कर्म है, भाग्य है, अब हम क्या करें। तो अंत में गजेंद्र लड़ने लगे ग्राह से। वे बहुत जोर लगा करके खींचते थे, कभी बाहर आ जाते थे गजेंद्र, कभी बाहर हो जाते थे, ग्राह को जल से खींच लेते थे, और कभी ग्राह जोर लगाता था तो वो भीतर जल में ले जाता था। इस तरह खींचा खींची हो रही थी। ग्राह भी एक ऋषि के साप से बना हुआ था और ये गजेंद्र भी एक प्रसिद्ध ऋषि अगस्त मुनि के साप से बना हुआ था। तो 1000 वर्ष तक युद्ध चला, जल से बाहर खींचना, फिर जल में खींचना, कभी ग्राह खींचता था, कभी गजेंद्र खींचते थे, इस तरह 1000 वर्ष तक युद्ध चला। और इस युद्ध को भगवान शंकर देख रहे थे, भगवान ब्रह्मा जी देख रहे थे, सभी देवता देख रहे थे और गजेंद्र पुकार रहे थे हमको बचाइए, लेकिन बीच बीच में कह देते थे कि जो भगवान सर्वेश्वर हैं, जगन्नाथ हैं, वे हमको बचावे, वे बड़े दयालु हैं। इस प्रकार की कुछ बात कहते थे जिससे देवता लोग समझते थे कि हमको नहीं पुकार रहा है, तो वे कह देते थे अब मरोगे तुम, तुम समझ रहे हो कि भगवान तुमको बचाएंगे तो वे इतना जल्दी नहीं आते हैं, हम तो सोच रहे थे कि तुमको बचा दे, मन में कह रहे थे, लेकिन हमको कभी बुला नहीं रहा, ये परमेश्वर को बुला रहा है, पर ब्रह्म को बुला रहा है। उनकी स्तुति में किसी देवता का नाम नहीं है, बल्कि यहां तक कह दिए कि ये ब्रह्मा आदि देवता जिनके एक तुच्छ अंश से जन्म लिए हैं, वे प्रभु हमारे मुक्ति के लिए, हमको छुड़ाने के लिए प्रकट हों। तब ये सब लोग रंज हो गए, तब ये बचना चाहता नहीं है, अब ये मरना चाहता है, इतना जल्दी भगवान नहीं आते। इस तरह से युद्ध चलता रहा। अंत में श्री भगवान आए गरुण पर चढ़ करके बहुत तेज गति से, मन के स्पीड से, गरुण जी की चाल है, लेकिन गजेंद्र डूब रहे थे, अब उनकी नाक सूंह पानी में डूबने वाले थे, लेकिन भगवान इसको देखे, जब पहुंचे सरोवर के ऊपर कुछ दूर थे तो देखे कि अब मेरा भक्त प्राण संकट में है, तो वे गरुण जी को छोड़ करके कूद पड़े। भगवान तो कहीं भी जा सकते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी है, चिन्मय, तो गरुण जी की अपेक्षा नहीं थी, गरुण जी को छोड़ करके कूद पड़े। उन्होंने विचार के गरुण मंदगामी है, जबकि गरुण जी मैक्सिमम स्पीड से चल रहे थे, तो भगवान ने सोचा कि गरुण मंद गति, ये मंद गति है, इसलिए छोड़ करके चल दिए। और आ करके गजेंद्र का पैर पकड़े, पैर पकड़ करके उनको खींचे, एक पैर, तो वो पैर जो पकड़ा था गजेंद्र का ग्रह, तो वो भी पैर पकड़े पकड़े आ गया, तो छोड़ा नहीं, पानी के बाहर आ गया, भगवान आकाश में उसको टांग लिए गजेंद्र को, और ग्राह भी चरण पकड़े पकड़े गजेंद्र का आ गया। इसके बाद भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मस्तक फाड़ दिया, बड़े हिसाब से फाड़ा कि गजेंद्र के पैर में चोट न लगे, बहुत बारीकी से भगवान ने उसके मुख को फाड़ करके और चरण निकाल लिया गजेंद्र का। जो भगवान के स्पर्श करते हैं गजेंद्र चतुर्भुज हो गया, भगवान के पार्षद बन गए, उनका दिव्य शरीर हो गया, तो हाथी ही चतुर्भुज पार्षद हो गया, हाथी का शरीर मरा नहीं, भगवान के स्पर्श से, छूने से वो दिव्य बन गया, चिन्मय बन गया। और गजेंद्र को गरुण जी पर बैठा करके भगवान अपने साथ ले गए वैकुंठ, गजेंद्र पार्षद बनाकर ले गए। तो इतनी बड़ी सिद्धि मिली, इतना बड़ा लाभ है, केवल भक्ति से। गजेंद्र ने और कुछ नहीं किया था, उनमें तप नहीं था, ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं थी, उन्होंने योगा अष्टांग योग नहीं किया था या ज्ञान योग का आचरण नहीं किया था। भक्त्या तुतोस भगवान गजयुद्ध पाया, भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। तो श्री प्रहलाद महाराज यह कह रहे हैं सिद्धांत भगवान से कि हे प्रभु, आप धन और उच्च वंश, सौंदर्य, विद्या, तेज, बुद्धि, बल आदि से प्रसन्न नहीं होते, आपको केवल भक्ति की आवश्यकता है, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, भक्त्या माम अभिजानाते जावन जश्चास्मि तत्त्वतः, मैं जितना मैं हूं, जो हूं, केवल भक्ति से कोई मुझे प्राप्त कर सकता है, मेरे बारे में जान सकता है। भक्ति की बहुत प्रशंसा है, विशेष करके श्रीमद् भागवतम में और पुराणों में भी, महाभारत में, सब जगह भक्ति की प्रशंसा है। भक्त्या तुतोस भगवान गजयुद्ध पायो, भक्ति से भगवान गजेंद्र के प्रति संतुष्ट हो गए थे। गजेंद्र बहुत विषयी थे, विषय भोग में रहते थे, एक एक पत्नियां नहीं, दर्जनों पत्नियां थी, और जंगल में मस्त खाना पीना, बहुत हरा भरा जंगल था, तो वहीं वृक्षों की टहनियों तोड़ना, खाना, घूमना और हथिनियों के साथ विहार करना, बस यही उनका कार्य था। परंतु वे भक्त थे, पूर्व जन्म में उन्होंने एक स्तोत्र सीखा था, एक प्रार्थना सीखा था, वह उन्हें याद था। जब वे इसके पहले एक मनुष्य थे दक्षिण भारत में, पांड्य देश के राजा थे, पांड्य देश अभी समय नाम बदल गया है, लेकिन ये केरला का अंश है या तमिलनाडु का या कुछ कर्नाटक का, तो वहां के राजा थे, इनका नाम था इंद्रदुम्न, और जवानी में ही इनको वैराग्य हो गया, राज छोड़ करके ये वन में चले गए, मलय पर्वत पर, चंदन जहां उगता है, और चंदन पर्वत पर, उसको मलय पर्वत कहते हैं, ये चले गए, और बहुत नगण्य फूस घास की कुटिया बना करके या पत्ते की कुटिया बना करके रहने लगे, भक्ति करने लगे। एक राजा इतना त्याग किया भगवान के प्रेम में, तो भगवान का हमेशा ध्यान करते थे और इस स्तुति का पाठ करते थे गजेंद्र मोक्ष का। तो एक बार उस पर्वत पर रहने वाले ऋषि अगस्त ऋषि इनके यहां गए, सुने कि हमारे देश के राजा यहां रह रहे हैं, तो गए शिष्यों के साथ, और अभिलाषी थे अगस्त मुनि कि ये हमारा आतिथ्य करेगा, हमारा स्वागत करेगा, लेकिन इंद्रदुम्न महाराज उस समय भगवान के ध्यान में मग्न थे और ये देखे कि अगस्त मुनि आए हैं, लेकिन ये बैठे रहे, भगवान में मन लगा हुआ था, आंखों में आंसू था, पुलक छाया हुआ था, तो देख करके भी ये अगस्त मुनि को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि कुछ व्यवधान हो जाता है। उन्होंने सोचा कि यदि इन लोगों का स्वागत करूंगा तो भगवान का ध्यान टूट जाएगा, तो इस भावना से उस महान ऋषि को दंडवत नहीं किए और किसी भी साधु को प्रणाम नहीं किया। तो भगवान अगस्त ने विचार किया कि राजा वास्तव में सच्चा भक्त है, परंतु इस तरह से इसके द्वारा अपराध होता रहेगा तो इसको भगवान की प्राप्ति में बहुत देर हो जाएगी, अतः कृपा करके उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम हाथी की तरह बैठे रह गए, उठे नहीं, प्रणाम नहीं किए, स्वागत नहीं किए, तो तुम हाथी हो जाओ। तो वही इंद्रदुम्न महाराज हाथी बने, लेकिन हाथियों में सर्वश्रेष्ठ हाथी गज इंद्र, गजेंद्र, वही जन्म मिला त्रिकुट पर्वत पर, तो ग्राह ने इनका चरण पकड़ा और भगवान आकर के इनको छुड़ा रहे। तो केवल भक्ति किया था गजेंद्र ने, गजेंद्र के पास कोई धन नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई जाति नहीं, लेकिन भगवान आ गए इनके पास और साथ में ले गए वैकुंठ। ऐसा सौभाग्य बहुत कम भक्तों को मिलता है कि भगवान अपने साथ ले जाए, भगवान के पार्षद लोग ले जाते हैं अन्य भक्तों को, कभी कभी ये सुना गया है, लेकिन स्वयं भगवान आकर के गजेंद्र जी को ले गए। इन सब घटनाओं में ये निष्कर्ष निकाला गया है प्रह्लाद महाराज द्वारा कि केवल भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। गजेंद्र अन्य सब गुणों से हीन थे, लेकिन भक्त थे। अगस्त मुनि का इन्होंने स्वागत नहीं किया पूर्व जन्म में, तो अभी भक्ति के कारण कि हमारा ध्यान छूट जाएगा थोड़े देर के लिए, आधा घंटा के लिए या दो मिनट के लिए भी असह्य था इनको। इसका ध्यान रखना चाहिए, हम भी जप कर रहे हैं तो जप में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। जप करें तो उस समय फोन आवे तो उसको काल समझना चाहिए कि ये हमारा दो मिनट है, चार मिनट व्यर्थ चला जाएगा। जिसको व्यर्थ टाइम गंवाने की आदत हो जाती है तो फिर वो घंटों गंवा सकता है, फिर कई दिन ऐसे बीत जाते हैं, वर्षों वर्षों वह भगवान से विमुख रहता है। तो सावधानी की आवश्यकता है, जब जप कर रहे हैं तो उस समय मोबाइल फोन आदि अपने साथ नहीं रखना चाहिए, क्या हो जाएगा, किसी का फोन आएगा तो कौन संसार का प्रलय होने वाला है और हम फोन से संभाल लेंगे, प्रलय नहीं होने देंगे। यह केवल अज्ञानता है, मनुष्य समझता है कि इस समय थोड़ा अटेंड कर ले, क्या हर्ज है, थोड़े उत्तर दे दें, रिस्पॉन्स दे दें, लेकिन उससे कितना व्यवधान होता है सबको मालूम है। भगवान का एक तो जप करना कठिन है, ध्यान करना कठिन है, और उसमें भी ये बाधाएं आ जाती हैं। तो हमारी भक्ति में बाधा न आवे, भगवान के स्मरण का तार न टूटे, इसके लिए इंद्रदुम्न महाराज अगस्त जैसे महामुनि को प्रणाम नहीं किए, उठे नहीं, स्वागत नहीं किए। तो अगस्त मुनि को सुखदेव गोस्वामी भगवान कहे, वे सर्वज्ञ हैं, वे इस बात को जान गए कि इंद्रदुम्न ने केवल भक्ति को अक्षुण रखने के लिए हमको प्रणाम नहीं किया या हमारा स्वागत नहीं किया। तब उन्होंने जल्दी मुक्ति के लिए इनको साप दिया कि हाथी हो जाएगा तो कोई अपराध नहीं करेगा। तो दूसरे जन्म में ही जब हाथी हो गए फिर मुक्त हो गए, भगवान के साथ वैकुंठ चले गए। इसके बाद दूसरे श्लोक में, दसवें श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, विप्राद सद्गुण युता दरबिंद नाभ पादार बिंद विमुखा सपचम वरिष्ठ है। सपचम वरिष्ठ, प्रहलाद महाराज कहते हैं मन्ने क्रिया वहीं से लेनी पड़ेगी। मैं ऐसा मानता हूं कि 12 गुणों से विभूषित ब्राह्मण यदि आपके चरण कमल से विमुख है तो उस ब्राह्मण की अपेक्षा वह चंडाल श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, जिसने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को, अपने प्राण को आप में अर्पित कर दिया है। वह चंडाल भी श्रेष्ठ है। किससे? विप्राद ब्राह्मण से। कथम भूतात ब्राह्मणात, कैसे ब्राह्मण से? जो 12 गुणों से युक्त है, पर यदि भक्त नहीं है। सब गुण है पर एक ही गुण माइनस है। विप्रा द्विशद गुण युता, द्विशद 6 × 12, 12 गुणों से युक्त है लेकिन अरविंद नाभ पादार अरविंद विमुखा। अरविंद नाभ पद्म नाभ भगवान के चरणारविंद से विमुख है। प्रहलाद महाराज ने पहले कहा कि भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, उसी को ये कह रहा है फिर कि भगवान स्वपट से, चंडाल से प्रसन्न हो जाएंगे, होते हैं यदि वह भगवान का भक्त है। और ब्राह्मण भक्त नहीं है तो उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। ब्राह्मण के 12 गुण हैं, बहुत प्रसिद्ध है, द्विशद गुण जुता। 12 गुण कौन कौन से हैं बता दें, समो दम तप शौचम, जिसका मन शांत हो, मन पर कंट्रोल किया हो उसको सम कहते हैं, और दम का अर्थ है बाहरी इंद्रियों पर कंट्रोल, आंख पर, हाथ पर, वाणी पर, सब पर कंट्रोल रखा, जिसमें सम और दम है, समो दमो ये दो हुए, और तप है और तपस्या है। तपस्या से तात्पर्य है वो अपने धर्म में निरत रहता है, अपने धर्म का पालन करना कठिनाई सहकर भी, इसको तपह कहा गया है। और शौचम, जो सब तरह से पवित्र है, घर द्वार वस्त्र और मन की सफाई आदि सौ, इसको शौच कहते सुचिता, जो बहुत पवित्र है ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को हमेशा पवित्र रहना चाहिए, स्नान करके। और भी कई उपाय हैं, शरीर को साफ रखना मिट्टी लगा करके, जल और मिट्टी से शरीर की सफाई होती है। अब तो मिट्टी के जगह पर साबुन हो गया है, तो जैसे भी हो, मान लीजिए कोई ब्राह्मण है तो उसे नहाना चाहिए। नहाना एक ब्राह्मण का गुण है, जाड़े में भी, ठंडा में भी, ठंडा से जो डरता नहीं है। अगर कोई ठंडा से डर जाए तो वह शूद्र है, वो ब्राह्मण नहीं है। अपने धर्म का पालन करने में, उसे मान लीजिए मंगला आरती में जाना है तो नहाने से डरना नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो मंगला आरती के लिए कुछ भक्त उठने में किचकच करते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहाओ, लेकिन पानी इतना ठंडा था, बर्फ का पानी, पर फिर भी प्रभुपाद जी कहते थे इससे इससे नहाओ। कभी कभी कपड़ा भिगो करके और वे पोंछ लेते थे शरीर को, पर कभी कभी वो नहाना पड़ता ही था, नहाना। तो इसको शौच कहते हैं, सूची, नहाना, शरीर को स्वच्छ रखना, मन को साफ रखना। तो कोई ब्राह्मण यदि समो दमः तपः शौचम्, सम दम तपस्या और शौच से युक्त है, सम दम तपः शौचम्, ये चार हुए, गिनते रहे कितने गुण हैं। और शांतिर आर्जो विरक्तिता, जैसे ब्राह्मण में शांति है, सहनशीलता, जो भूख प्यास सह सकता है, सर्दी गर्मी मान अपमान जो द्वंद्वों को सहन करता है, तो इसको शांति कहते हैं। जीवन में दुख आएगा, सुख आएगा, पर सबको सहना चाहिए। जो ब्राह्मण शांति से युक्त है और आर्जव सरलता से युक्त है, जिसमें सरलता है, वस्त्र पहनने में सरल है, दिखावा नहीं जिसके जीवन में है, उसको सरल कहते हैं, आर्जव ऋजुता और विरक्तिता। इसके साथ ही विषय भोगों में वैराग्य है, इंद्रियों के विषयों में जिसे राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, ब्राह्मण के ही विशेषता है, ब्राह्मण में गुण है, गुण होना चाहिए, उसमें विरक्ति होनी चाहिए, विषय भोगों में रुचि नहीं रहनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो शांति, आर्जव और विरक्ति, और पहले के चार, सात हुए ना, और इसके बाद ज्ञान विज्ञान संतोषा, उसमें ज्ञान हो, विज्ञान हो और संतोष हो, ये तीन हुए। तो सात तीन दस, और सत्य आस्तिक के, वो हमेशा सत्य वचन बोलता, सत्य बोलना एक बहुत बड़ा गुण है। यदि ब्राह्मण सत्य बोलता है और आस्तिक, उसमें आस्तिकता है, वेद शास्त्र में पूर्ण श्रद्धा है उसकी, ये 12 गुण हैं, इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है, पर एक कमी है कि वह भगवान का भक्त नहीं है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, विप्रा विषद्गुण युतात, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण से, ब्राह्मण की अपेक्षा मैं उस स्वपच को, चंडाल को श्रेष्ठ मानता हूं, वरिष्ठम मनने, जिसने अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने अर्थ को, अपने जीवन को, प्राण को आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं इस टीका में, कथम भूतात् विप्रात् कथम भूतम् स्वपचम वरिष्ठम मन्ने से। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, जो ब्राह्मण अरविंद नाभ के पदार बिंद से विमुख है, उसकी अपेक्षा उस चंडाल को श्रेष्ठ मानता हूं, वरिष्ठम मानता हूं, जो अरविंद नाभ के पदार बिंद में अपने जीवन को अर्पित कर दिया है, अपना धन अर्पित कर दिया, अपना मन अर्पित कर दिया, अपनी बुद्धि अर्पित कर दिया, और मन से वह दूसरे का चिंतन नहीं करता है, भगवान का चिंतन करता है, और वाणी से दूसरे का गुण नहीं गाता, भगवान का गुण गाता है, भगवान का नाम जपता है, और जीवन कैसे अर्पित किया, तो जीवन में एक मिनट भी, दो मिनट कभी दूसरे काम में नहीं लगता, अपने जीवन के जो भी टाइम है, समय है, स्पैन ऑफ लाइफ, जीवन की अवधि है, उसमें से कुछ भी कटौती नहीं करता है कि दूसरे काम में लगा दें, ये काम जरूरी है, वो काम, तो अपने पूरे जीवन भर वो भगवान के लिए ही काम करता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो उस स्वपच को मैं उक्त ब्राह्मण से वरिष्ठ मानता हूं। यदि ब्राह्मण भक्त है, भक्ति उसमें है, तो कहना ही क्या है, वो तो श्रेष्ठ है ही। ऐसे सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो ब्राह्मण सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति होता है समाज में। यदि उसमें भक्ति हो जाए, आ जाए, तो कहना ही क्या है। तो उधर से फिर देखिए, कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी श्रेष्ठ है ब्राह्मण से, केवल भक्ति करने से, भगवान को समर्पण करने से। तो फिर वैश्य भगवान को समर्पण करे तो फिर क्या कहना, क्षत्रिय यदि भगवान का भक्त बने तो क्या 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 कहना है। तो स्वपच की नीचता इसके लिए नहीं है कि वह केवल जाति से हीन है, यदि उसमें भक्ति है तो वो श्रेष्ठ है, और भक्तिहीन ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। अतः सहज समझ में बात आ जाती है कि महत्व का कारण भक्ति है, भक्ति से ही ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्षत्रिय श्रेष्ठ है, जब चंडाल श्रेष्ठ है तो फिर कहना ही क्या। इसीलिए सबको भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
यह बात प्रहलाद महाराज सभी देवताओं के सामने श्री भगवान से कह रहे हैं। विप्रा द्विषद्गुण युता दरबिंद नाभ पादार बिंद विमुखा सपुचम वरिष्ठम मन्ने, मैं मानता हूं, तदर्पित मनोवचने हितार्थ, जिसने अपने मन को और वचन को इहितम, अपने कर्म को, अपने प्राण को भगवान को अर्पित कर दिया है। प्राण अर्पित करने का मतलब है कि एक सांस भी वो व्यर्थ नहीं खोता है, भगवान का नाम जपने में, भगवान की याद करने में, पूजा करने में समय खर्च करता है। प्राण का अर्थ श्वास होता है, जिसने अपने प्राण को भगवान को अर्पित कर दिया, मतलब जीवन में जो भी सांस है केवल भगवान की भक्ति करते हुए ही बीतेगी। तो ऐसा भक्त, ऐसा चंडाल क्यों श्रेष्ठ है, कहते हैं भक्ति करने से, और वो अपने कुल को भी पवित्र कर देता है। कुलम पुनाति, वह अपने वंश को, खानदान को पावन बना देता है भक्ति के कारण, और वह ब्राह्मण अपने आप को भी पवित्र नहीं कर पाता। यदि भगवान की भक्ति से शून्य है तो आत्मानम अपि न पुनाति, अपने को भी पवित्र नहीं कर पाता है, और वह चंडाल जो शूद्र से भी कई गुना नीचे है, वह अपने को तो पवित्र करता ही है, अपने खानदान को भी पवित्र कर देता है, उसके बच्चे, उसके पिता, पितामह, उसकी पत्नी आदि सब भगवान से संबंधित होकर के पवित्र हो जाते हैं। कुलम पुनाति, वह अपने कुल को तार देता है, पवित्र कर देता है, और वह ब्राह्मण जो भगवान के चरण कमल से विमुख है, वो अपने को भी पवित्र नहीं कर पाता है। भूरि मानव, उससे बहुत गर्व होता है, मान का अर्थ है गर्व, बहुत अभिमान में होता है, तो सब गुण होते हुए भी वो डूब जाता है। ये गुण यदि भगवान की भक्ति न हो तो भारी पत्थर का काम करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जल्दी न डूबता हो तो उस पर पत्थर रख दिया जाए तो जल्दी डूब जाएगा। तो ये जो गुण बताए गए 12 गुण, ये भक्ति करने पर बहुत तारने वाले हो जाते हैं, बहुत हल्के, लेकिन भक्ति नहीं करने पर ये गुण ही डुबा देते हैं। इसलिए भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने वाला पवित्र होता है, दूसरों को भी पवित्र करता है, और भक्ति से शून्य है और सब गुण है तो अपने को भी नहीं पवित्र कर सकता है, दूसरों को क्या पवित्र करेगा। कितना स्पष्ट प्रवचन है प्रह्लाद महाराज, वो भी भगवान के सामने, ब्रह्मा जी के सामने, शिव जी के सामने व्यक्त कर रहे हैं। सभी देवता हैं, देवराज इंद्र आदि सुन रहे हैं, सब लोग ध्यान लगा करके सुन रहे हैं, देख रहे हैं अब भगवान सिंह देव पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, अब प्रभु शांत हो रहे हैं कि नहीं। तो प्रह्लाद महाराज ने साफ कहा कि भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, इस बात को सुन करके समस्त देवताओं में भगवान से प्रेम करने की प्रवृत्ति बढ़ रही होगी, भाव बढ़ रहा होगा। जब भगवान हाथी से प्रसन्न हो गए तो हमसे क्यों नहीं होंगे, यह भक्ति ही चाहिए। और भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इस तरह 9 प्रकार की भक्ति है। और श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि भक्ति 64 प्रकार की है, एक एक के और कई कई प्रकार हो जाते हैं। तो भक्ति वास्तव में जितने जीव हैं उतने प्रकार की है, कोई जरूरी नहीं है कि हमारी भक्ति के अनुसार ही आप भक्ति करें। ये आप अपने स्वभाव के अनुसार जो भी भाव है भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कायेन वाचा मनसेन गैरवा बुद्ध्यात्मना वांसुत स्वभाव, अपने शरीर के अनुसार कायेन वाचा वचन से, यदि कोई व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता है तो संस्कृत बोल करके ही भगवान की आराधना करे जरूरी नहीं है, जो भाषा जानता है। यदि इंग्लिश जानता है तो इंग्लिश में भजन करे, भगवान के बारे में विचार करे। अवश्य महामंत्र आदि जो मंत्र हैं उनको न बदले, वो जैसे हैं वैसे ही जपे, लेकिन उनको याद करेगा अपने इंग्लिश भाषा में। जैसे हम लोग देखते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यदि रशियन व्यक्ति है तो रशियन भाषा में अपने विचार को व्यक्त करेगा। कायेन वाचा मनसेन गैरवा मनसा, अपने मन के अनुसार भगवान की याद करें। इंद्रियवा अपनी इंद्रियों से भगवान, जैसे दर्शन करना या कुछ बोलना, मन में सोचना, मन भी एक इंद्रिय है। इंद्रियवा इंद्रियों से, और कोई भक्ति नहीं है तो भगवान का प्रसाद तो अवश्य खाए। भगवान जिसको खा करके छोड़े हैं उच्छिष्ट, उसको खाए, ये भी एक भक्ति है। तो क्या दिक्कत है भगवत प्रसाद खाने में? खाते तो हैं ही, भगवान का प्रसाद खाएं, इधर उधर का पेय नहीं पीना चाहिए। जैसे कई भक्तों की भी आदत होती है, किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और पीने लायक जो चीज नहीं है, शीशियों में बंद है, बहुत दिन का सड़ा हुआ, उसको पीते हैं, और कोई चीज खाते हैं जो भगवान को अर्पित नहीं है, कभी नहीं खाना चाहिए। यदि इस तरह से भक्त हो करके खाएंगे पिएंगे तब इससे सिद्ध होता है कि भगवान में इंद्रिय नहीं लगी। अपनी इंद्रियों को बचा करके रखना चाहिए, कभी भूल करके भी मैं वैसा चीज नहीं पीऊंगा जो भगवान को अर्पित नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। और भगवान का दर्शन करना आंख से, यदि ज्ञान नहीं है, पढ़ने की शक्ति नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है, तो प्रणाम कर सकते हैं ना भगवान को, प्रणाम करना चाहिए। और दर्शन, भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान को निहारना, नख से चरण से लेकर सिर तक, सिर से चरण तक, इस प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने मन दिया है, इंद्रिय दिया है, आंख दिया है, कान दिया है, कान का उपयोग है भगवान की बातें सुने। जैसे आज गा रहे थे श्याम ब्रह्म जी, सोई रसना जो हरि गुण गावे, वास्तव में जीभ वही जीभ है, सार्थक है जो भगवान के बारे में गाती है। इसी तरह से सभी इंद्रियों की सार्थकता है अपने अपने ग्रहण के अनुसार भगवत विषय को ग्रहण करना, आंख से भगवान को देखना, भगवान की छवि को, हाथ से सेवा करना, पैर से उनके धाम की यात्रा करना, जैसे वृंदावन धाम, और बहुत तीर्थों में नहीं घूमना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। खास भगवान के धाम में, जैसे मायापुर धाम है, जगन्नाथपुरी धाम या वृंदावन द्वारका, बस यही सब धाम है। और तीर्थ यात्रा तो नरोत्तम दास ठाकुर के अनुसार तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, वो कहते हैं तीर्थ यात्रा में परिश्रम होता है और यह केवल मन का भ्रम है कि हम घूम गए, अब यहां चले गए वहां चले गए, देखा देखी होता है, उसमें भक्ति का कोई लेना देना नहीं होता। तो इसीलिए चरण से भगवान के धाम में, भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। इस प्रकार सभी इंद्रियों से इंद्रियाधिपति भगवान की हृषिकेश की उपासना करना। तो जिस भक्त ने, जिस चंडाल ने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को और अपने अर्थ को, जो कुछ भी उसके पास है, उसे भगवान की सेवा करता है, भक्ति करता है, तो वह अपने कुल को पवित्र कर देता है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर एक भी भगवान कृष्ण का भक्त हो जाता है तो अवश्य परिवार के अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं, वो भी भगवान की आरती में भाग लेते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जब प्रारंभ कर देते हैं, तो इस तरह से पवित्र हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज की भक्ति से हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो गया, और भगवान ने स्वयं कहा है कि तुम्हारे 21 पीढ़ी के लोग तर गए, तुम चिंता मत करो। प्रहलाद महाराज भगवान से मांगे कि हमारे पिताजी आपको बहुत गाली दी, आपके प्रति दोष दृष्टि किए, और मैं आपका भक्त था तो मुझको सताए, अतः हमारे पिता की गलती को आप माफ कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे पिता के साथ तो और भी 21 पीढ़ी के लोग उतर गए, जबकि वर्तमान जीवन में प्रहलाद महाराज की बहुत पीढ़ी नहीं थी। ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप, और कश्यप से हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद महाराज, ये कितनी पीढ़ी हुई। पांच पीढ़ी, लेकिन भगवान 21 पीढ़ी गिना रहे हैं। तो आगे होने वाली पीढ़ी जिसमें आगे होगा विरोचन, बलि, ये सब भी तर गए, और जो जो माता के दृष्टि से पीढ़ियां हैं, जैसे मां की मां नानी, कयाधु की माता, तो फिर उसकी माता, इस तरह से अब 21 पीढ़ी पीछे ढकेलिए, वहां तक टच करती है, भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि भक्ति 21 पीढ़ी पीछे, 21 पीढ़ी आगे होने वाली, और भी संबंधियों की पीढ़ियां सब पवित्र होती है, भक्ति का ऐसा प्रभाव है। इसीलिए भक्ति करनी चाहिए। हरे
कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे
हरे हरे।
भक्त के परिवार में तो स्वाभाविक हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे प्रणाम करना सीख जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, साधु संत को प्रणाम करते हैं, स्वाभाविक। देख करके सब सीख जाते हैं। कभी कभी वृद्ध लोग नहीं सीख पाते हैं, लेकिन वे भी तर जाएंगे, वो प्रसाद खाते ही हैं। अगर उस घर में रहते हैं तो प्रसाद खाते हैं, और कभी कभी भगवान की कथा सुना करें, गीता पढ़ा करें, इससे उनका उद्धार हो जाएगा। तो परिवार में एक व्यक्ति भक्ति करता है तो उससे सबका निस्तार होता है। कितना महत्व है भक्ति का, एक व्यक्ति भक्ति कर रहा है उस प्रभाव से सब पवित्र हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज से भगवान ने कहा कि तुम कुछ वर मांगो मुझसे, तुमको तुम्हारी जो इच्छा हो, और अपनी प्रशंसा किए भगवान की, मैं सब वर देने में समर्थ हूं, सब कुछ दे सकता हूं, मैं तुमसे पूरा पूरा प्रसन्न हूं, मुझसे मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने और कुछ नहीं मांगा, बहुत भगवान आग्रह कर रहे थे कि मेरी इज्जत रखो, मैं बड़ा दानी हूं, मेरा नाम डूब जाएगा यदि तुम कुछ नहीं मांगोगे, मैं कुछ देना चाहता हूं, मैं देता ही हूं, सबको दिया हूं, तो प्रहलाद तुमको भी देना चाहता हूं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि हमारे हृदय में कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। इतने बड़े निष्काम भक्त, भगवान के बार बार आग्रह करने पर भी उन्हें कह दिया कि जब आप आग्रह कर रहे हैं, देना ही चाहते हैं, तो ये वर दीजिए कि हमारे हृदय में किसी काम का, इच्छा का अंकुर ही न उगे। भगवान तो फीके पड़ गए, लज्जित जैसे हो गए। उन्होंने कहा था कुछ तो मांगो, हमारी ओर देख करके मांगो, हमारी इज्जत के लिए मांगो, लेकिन प्रहलाद तो प्रहलाद थे, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप यदि देना ही चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि हमारे मन में कामनाओं का बीज भी अंकुरित न हो, कभी इच्छा न हो किसी वस्तु की। भगवान से भी भक्ति मांग सकते थे, लेकिन साफ कह दे कि ऐसा बल दीजिए कि हमको कोई इच्छा न हो। इस प्रकार के निष्काम भक्त थे प्रहलाद महाराज। तो ही प्रहलाद महाराज भक्ति के महत्व पर प्रवचन कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, एक एक श्लोक में आनंद का समुद्र भरा हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी को प्रहलाद महाराज की स्तुति बहुत प्रिय थी, अपने प्रत्येक प्रवचन में इसमें से कोई न कोई श्लोक वे उद्धृत करते हैं, तो इस स्तुति को पढ़ना चाहिए। अब तो इतना समय नहीं है कि एक एक श्लोक की व्याख्या करके इसको पूरा किया जाए, लेकिन जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा उसको पकड़ने की। 10 श्लोक तक हुआ ना। तो 11वें श्लोक में कहते हैं, नैवात्मनः प्रभुरयम् निजलाभपूर्णो मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते। तो श्री भगवान अपने भक्त से कोई वस्तु स्वीकार करते हैं, मान स्वीकार करते हैं, तो वह अपने लिए नहीं। मानम, मानम का अर्थ है मान, कोई वस्तु या कुछ भी। जैसे ये कह दिए प्रहलाद महाराज की जो चंडाल भगवान को अपना मन बुद्धि धन अर्पित करता है तो श्रेष्ठ है, तो इसी पर शंका उठती है। तो भगवान चाहते हैं क्या किसी का धन, किसी से मान चाहते हैं? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैवात्मनः, भगवान आत्मनः अपने लिए अविदुष अज्ञ भक्त से या जीव से कुछ चीज नहीं चाहते हैं, क्योंकि निजलाभ पूर्ण, भगवान स्वरूप के लाभ से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है भगवान को। तो किसी के पत्र पुष्प को, किसी के भाव को, किसी के सम्मान को स्वीकार करते हैं तो वह जिसके वस्तु को स्वीकार करते हैं उसी के हित के लिए, और वो भी स्वीकार करते हैं करुणा, बस बहुत कृपालु हैं, करुण हैं, तो स्वीकार करते हैं। जज्जत जनो भगवते विदधित मानम तत्चात्मने प्रतिमुखस्य यथामुखस्य। भगवान जो जो वस्तु स्वीकार करते हैं किसी भक्त के द्वारा, तो वह केवल उसी के लिए, उसको इसका हित करने के लिए। जैसे प्रतिदिन भक्त अर्पण करते हैं भगवान को प्रसाद, तो ऐसा नहीं है कि भगवान भूखे हैं, पूर्ण हैं, वही सबको भोजन दे रहे हैं, लेकिन भगवान भोजन को स्वीकार करते हैं। क्यों? भक्त के लिए ही। भक्त भगवान को भोग अर्पण करता है तो वो भोग उसी को मिलता है प्रसाद बन करके, तो उसी के लिए स्वीकार करते हैं कि यह खाए, यह पहने। तो भगवान भोजन स्वीकार करते हैं, भगवान वस्त्र स्वीकार करते हैं भक्त के लिए, अपने लिए नहीं। यही आत्मा की पूजा है, तो भगवान को देना अपने को ही देना है। जैसे प्रतिमुख का श्रृंगार करना हो, दर्पण में प्रतिबिंबित यदि मुख है उसको प्रतिमुख कहते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को आप सजाना चाहते हैं, उस पर तिलक करना चाहते हैं, तिलक या कोई भी शोभा श्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुखस्य, मुख का श्रृंगार करना पड़ेगा। मुख का श्रृंगार करेंगे तब प्रतिबिंब की शोभा बढ़ेगी। प्रतिबिंब में जो मुख दिखाई पड़ रहा है उसकी तो शोभा तभी है जब मुख की शोभा है, ऐसे प्रतिबिंब का कोई श्रृंगार कर भी नहीं सकता है। तो कोई भी वस्तु, विचार, सम्मान जब भगवान को अर्पित किया जाता है तब वह व्यक्ति को मिलता है, उसी को नहीं, सारे संसार को, सबको। जैसे वृक्ष की जड़ में मूल में पानी देने से वो वृक्ष के शाखा प्रशाखा फल फूल पत्र सब में पहुंच जाता है। से भगवान जगत वृक्ष के मूल हैं, उनका सम्मान करने पर उनको कुछ देने पर वो वस्तु सबको प्राप्त होती है और बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। प्रतिमुख से यथा मुख श्री, यदि कोई चाहता है कि दर्पण में प्रतिबिंबित मुख सुंदर हो उसमें तिलक हो तो मूल मुख पर तिलक करना पड़ेगा। तो भगवान की पूजा छोड़ करके, भगवान को कुछ देना छोड़ करके यदि व्यक्ति दूसरे को देता है या स्वयं लेना चाहता है तो वो ले नहीं पाएगा, उसको मूल को देना होगा। अगर हम वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं, वृक्ष को हरा भरा देखना चाहते हैं, वृक्ष में फल देखना चाहते हैं तो वृक्ष के मूल में पानी डालें, मूल की सेवा करें तो अपनी सेवा हो जाएगी। अगर कोई टहनी कोई शाखा सोचे कि हमको पानी मिले तो उस पर पानी डाला जाए तो उस पानी को पी नहीं पाएगी, मूल से ही उलेगी। तो इसी प्रकार भगवान मूल है सबके, सबके आत्मा है, परमात्मा है, उन्हीं को जब कोई वस्तु दी जाएगी तो उसको मिलेगी, देने वाले को और सबको, सारे संसार को। जैसे द्रौपदी जी ने भगवान को साग का पत्ता अर्पण किया तो उससे भगवान डकार दिए और समस्त ऋषियों का पेट भर गया, तो सारे संसार का चर अचर सबका पेट भर गया। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि किसी की दी हुई वस्तु को, मान को भगवान स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं स्वीकार करते हैं, सब तरह से परिपूर्ण है, उनको कुछ नहीं चाहिए फिर भी ये स्वीकार करते हैं। किस लिए? करुणा, वे दयालु हैं, उसी के हित के लिए, जो अर्पित करता है उसी के हित के लिए स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को कोई अर्पित करता है कुछ तो भगवान निश्चित स्वीकार करते हैं, परंतु अपने लिए नहीं। उनके वैकुंठ धाम में कोई भुखमरी नहीं है कि कोई वस्तु भेज देंगे गोलोक में वहां काम आएगी, कोई भी वस्तु यहीं रहेगी और भक्त के लिए। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। नैवात्मनः प्रभु रयाम निजलाभपूर्णो, अयम प्रभु ये भगवान सिंह देव निजलाभ पूर्णा, अपने लाभ से परिपूर्ण है, इनको इतना ही बड़ा लाभ है, पूर्ण है। कोई भक्त हो गया तो भक्त से बहुत चीजों की मांग नहीं करते हैं, बहुत नहीं चाहिए, भक्त ही सबसे बड़ा लाभ है भगवान के लिए। निज, निज का अर्थ है अपना, भक्त, अपना भक्त ही बहुत बड़े बड़ा लाभ है। मानव जनाद विदुष, अविदुष मायाबद्ध जीव से, अज्ञ जीव से भगवान मान स्वीकार करते हैं, लेते हैं, लेकिन वो केवल करुणा कृपा बस ले लेते हैं, कृपा बस, और कोई आवश्यकता बस नहीं, कोई आवश्यकता उनको है नहीं, तो सब तरह से परिपूर्ण है, संपूर्ण धन ऐश्वर्य सब कुछ उनका है, लेकिन फिर भी स्वीकार करते हैं। तो स्वीकार करते हैं इस बात से भक्तों का उत्साह बढ़ना चाहिए कि भगवान लेते हैं, यदि हम कुछ उनको अर्पण करते हैं तो लेते हैं। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं तो क्यों लेते हैं, न आत्मना अपने लिए नहीं, करुणा करुणा करके उस भक्त के लिए लेते हैं। तो हमें भगवान को मान अर्पण करना चाहिए, ये भक्ति पूर्वक कोई भी पत्र पुष्प फल आदि देते हैं तो लेते हैं तो देना चाहिए। यदि प्रहलाद महाराज कह देते कि ये सब फालतू चीजें हैं, भगवान खाते नहीं हैं, भगवान लेते नहीं हैं, तब ये हो सकता था कि हम लोग ना दें या दुनिया में प्रचार हो जाता कि भगवान नहीं लेते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं लेते हैं लेकिन अपने लिए नहीं, भक्त के लिए लेते हैं। और तो भक्त कोई बन गया तो भक्त से ही परिपूर्ण है, भक्त ही परम लाभ है भगवान के लिए। और भक्त से कोई अपेक्षा नहीं रखते कि हमारी सेवा करे, हमको दे। भक्त भगवान का हो गया वही बहुत बड़ा लाभ है भगवान के लिए। भगवान मानते हैं सबसे बड़ा धन मानते हैं कि कोई जीव भक्त हो गया तो मैं पूर्ण हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि भक्त बन गया तो भक्त से वसूल किया जाए, और सेवक मिल गया अब सेवा फ्री करावे, भगवान का ये विचार नहीं है। वो सेवक बना लेते हैं और सेवक से स्वीकार करते हैं, वे अनपेक्ष हैं, अपेक्षा नहीं है, फिर भी सेवा को स्वीकार कर लेते, ठीक है लाओ दो। तो केवल भक्त के लिए ही, उसके हित के लिए। जब जब जनों विदधते, जो जो मान जो जो वस्तु कोई भक्त भगवान को अर्पण करता है उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। लोक में एक उदाहरण है, मां कि कोई बच्चा कभी मां को पैसा देता है या कोई वस्तु देता है तो माता उसको रखे रहती है। किसके लिए रखती है? उसी बच्चे के लिए, उस समय पर उसको देती है खाने के लिए या कुछ। तो माता अपने लिए उस वस्तु को नहीं रखती है, पुत्र के लिए ही रखती है। तो भगवान तो सब तरह से परिपूर्ण है, उनको कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के हित के लिए करुणा बस दया बस भगवान स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जीव को सुखी करने का यही तरीका है। भगवान को वस्तु दी जाएगी तो कई गुना होकर के भक्त को मिलती है। हम भोक्ता नहीं है, हम कोई चीज भोगना चाहे तो भोग सकते नहीं, भोगना पड़ेगा वो भगवान के थ्रू ही। जब भगवान के पास वो वस्तु जाएगी तब उस वस्तु को हम भोग पाएंगे। तो इसीलिए जीव को सुखी करने के लिए, उसका दुख दूर करने के लिए करुणामय भगवान भक्त की दी हुई वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। जैसे मां सबरी का वे बेर स्वीकार की खाए, और कई उदाहरण हैं, जैसे द्रौपदी जी का दिया हुआ पत्ता खाए, और मालिन का दिया हुआ फल। जब भगवान कृष्ण बच्चा थे तो किसी मालिन ने एक कहा फल लो तो भगवान कृष्ण हाथ में अनाज लेकर के दौड़ गए, लेकिन चलने में वे लड़खड़ा रहे थे तो अंजलि में थोड़ा सा अन्न था उसको लेकर के चल रहे थे, वो अन्न भी गिर गया। जाते जाते मालिन के पास कुछ भी अन्न नहीं था, अंजलि खाली थी, लेकिन उस भाग्यवती मालिन ने भगवान के हाथों को फल से भर दिया। इधर हाथ में फल रखना था कि उसका पूरा टोकरी रत्नों से भर गया। इस प्रकार भगवान को कुछ दिया जाता है तो भगवान उसको लौटा देते हैं, उसे अनंत गुना होकर के लौटा देते हैं। यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को देना व्यर्थ हो गया, घाटा लगा, बहुत बड़ा लाभ है। जैसे प्रतिबिंब का श्रृंगार करने के लिए मुख का श्रृंगार करना होता है, यहां तिलक करेंगे तभी न प्रतिबिंब में तिलक दिखाई देगा, नहीं तिलक अगर प्रतिबिंब को देना चाहे तो वहां तो तिलक होगा नहीं, वो तो तिलक शीशे पर रह जाएगा। तो यदि प्रतिबिंब पर तिलक देना है उस फोटो में तो तिलक देना पड़ेगा मूल मुख को, तब उसमें शोभा बढ़ेगी। इसी तरह से कोई भी विचार, कोई भी भाव भगवान के प्रति अर्पित होना चाहिए। भगवान के प्रति कोई वस्तु या कोई व्यक्ति यदि अपना बेटा है, अपना पिता है, तो उसे भगवान को देना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में ये परंपरा है, जब बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो सबसे पहले उसको माता ले जाती है भगवान के पास और अर्पित करती है कि आपका शिशु, आपका पुत्र आपको समर्पित है। तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और जो विषय हम वहन करते हैं यही बात हम लोग गांव में देखते हैं। विवाह के अवसर पर वर और कन्या दोनों दुर्गा जी के मंदिर में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और भगवान के मंदिर में जाते हैं, ये मांगते हैं हमारा वैवाहिक जीवन आपको अर्पित है, हम आपकी सेवा करें। तो भगवान आशीर्वाद देते हैं तो ये स्वभाव है भगवान का। वो ऐसा नहीं बनते हैं कि मैं बहुत धनी हूं, मुझको क्या चाहिए, क्या दिखा रहे हो, पैसा अरे फल हमको नहीं चाहिए, ले जाओ हटाओ, नहीं। सबसे बड़े हैं, महान हैं, लेकिन स्वीकार करते हैं, वो अर्पित करने वाले के हित के लिए ही, अपने लिए नहीं। स्वीकार करते हैं इस बात को स्वयं भगवान ने गीता में कहा है, अस्नामी, यदि मुझे कोई प्रेम से पत्र पुष्प फल जल देता है तो मैं खाता हूं। अस्नामी, और जल के लिए भी कहते हैं खाता हूं। तो हमें याद आ जाती है कि शायद भगवान मायापुर के भाव से बोल रहे हैं, बंगाली भाव में, कि जल खाबो, जल खाता हूं, मैं जल खाता हूं। तो भगवान तो सभी भाषा के ज्ञाता हैं और सबके लिए बात कह रहे हैं, तो शायद वे कह देते कि मैं जल पीता हूं तो बंगाली लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं जल खाता हूं। यदि कोई प्रेम से मुझको अर्पित करता है, भक्ति से अर्पित करता है तो मैं खाता हूं, जल फल तुलसी दाल इत्यादि खाता हूं। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि उनको अर्पित किया जाए, भक्त सब करें। और खाते हैं लेकिन भक्ति पूर्वक अर्पित होता, भक्त्या पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। और दो बार कह रहे भक्ति पूर्वक, भक्त स्नेह करे भगवान से, वो स्वयं भक्त हो अर्पित करने वाला, और भक्त प्रेम से अर्पित करे, भक्ति से, भगवान को अभिमान से अर्पित ना करे। तुम्हें बहुत बढ़िया प्रसाद बनाया हूं और भगवान को रख दो। इस भाव से नहीं, बहुत नम्र भाव से, प्रेम से, स्नेह से जाना चाहिए अल्टर के पास और भगवान को प्रणाम करके उनसे कहना चाहिए कि प्रभु आप इसको स्वीकार कीजिए। तो भगवान भक्त के भक्ति से प्रसन्न होकर के उसको स्वीकार करते, जो स्वयं अपने मुख से इस बात को कह रहे हैं और उसी बात को श्री प्रह्लाद महाराज कह रहे हैं। मानम जना ददित सो करुणो वृणीत, कृपा करके भगवान उसको स्वीकार करते हैं, अपने लिए नहीं, क्योंकि उनको कोई जरूरत नहीं है, जरूरत वास्तव में भक्त को ही है। तो भक्त पर कृपा करके उस वस्तु को स्वीकार कर लेते। तस्मात, इसलिए चूंकि भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं भी कुछ भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूं। और भक्ति में सबसे श्रेष्ठ भक्ति है भगवान के गुणों का वर्णन करना। तो मैं भी अपनी, प्रह्लाद महाराज कहते हैं, मैं भी अपनी जथा मनीषा, अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूं। क्यों महिमा का वर्णन कर रहे हो? तो प्रह्लाद जी कहते हैं क्योंकि प्रकृति के गुणों से बद्ध होकर के जीव माया के अधीन हो जाता है, माया में आ जाता है। तो पवित्र होने के लिए, मुक्त होने के लिए यही उपाय है कि भगवान के बारे में गाया जाए, भगवान के बारे में बोला जाए, आपकी महिमा को बोला जाए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। आपका गुण गा करके, आपकी महिमा का बखान करके व्यक्ति माया से पार हो जाता है। इसीलिए मैं, यदि बुद्धि नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जथा मनीषा जितनी बुद्धि है उसके अनुसार मैं आपके विषय में बोल रहा हूं। यह इसीलिए कि यही एक उपाय है जिससे जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये 12वें श्लोक में है। पुमान जे नहीं अनुवर्णित है ना, जिस अनुवर्णन से पुमान जीव पवित्र हो जाता है, पुएत जे नहीं, पुएत पवित्र हो जाता है। माया जगत में जीव अशुद्ध हो जाता है, गंदा हो जाता है, लेकिन वो पवित्र कैसे होगा? भगवान के विषय में बोलने से, सुनने से, आपके विषय में आपकी महिमा बोलने से, आपका गुण बोलने से, आपका नाम बोलने से पवित्र होता है। इसलिए मैं बोलने जा रहा हूं। जथा मनीषम, जैसी मेरी बुद्धि है, जितना मैं जानता हूं उसके अनुसार बोल रहा हूं। पूरी महिमा का वर्णन तो नहीं कर सकता, लेकिन जथा मनीषम कह करके प्रहलाद महाराज कहे जथा मनीषम, जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार बोल रहा हूं। आपकी महिमा अनंत है, अथाह है, जैसे आकाश, लेकिन उसी आकाश में श्री गरुड़ ही उड़ते हैं और एक मच्छर भी अपनी शक्ति के अनुसार उड़ता है। जैसा जिसके जिसकी शक्ति है, कोई पक्षी 1 किलोमीटर ऊपर उड़ता है, कोई ज्यादा उड़ता है, गरुड़ जी बहुत बड़े स्पीड से और बहुत दूर तक उड़ते हैं। और मच्छर भी, मक्खी भी उड़ते हैं, तो मच्छर की तरह मक्खी की तरह हमारी जितनी शक्ति है उतना मैं बोल रहा हूं आपकी महिमा के विषय, क्योंकि यही उपाय है। भगवान के बारे में बोलने से ही जीव पवित्र होता है। साह प्रहलाद महाराज कहते पुए तो जे नहीं, जे नहीं, जिस से, जिस महिमा वर्णन से, गुण वर्णन से ही, बस केवल इसी से, भगवान का कीर्तन करने से ही जीव पुए तो पवित्र होता है, माया बंधन से छूटता है। इसलिए मैं आपके विषय में बोलने जा रहा हूं। जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण।